नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक की गहराइयों में उतर रहे हैं, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग एक।
जी हाँ,
ये पुस्तक 1988 से 1990 के बीच पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी और ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है।
बिल्कुल, और इस पुस्तक माला का महत्व पूज्य गुरुदेव ने खुद बताया था।
हाँ, उन्होंने इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था। मुझे याद है वसंत पंचमी 1990 को उन्होंने वंदनीय माता जी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा
जी,
और उन्होंने आग्रह किया था कि सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को, मतलब मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य को, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पुस्तक के जो मूल विचार हैं और जो भविष्य का नजरिया इसमें दिया गया है लगभग 35 साल पहले, उसे समझें।
बिल्कुल, तो ये पुस्तक उस समय के संकटों को देखती है और फिर 21वीं सदी के लिए एक उम्मीद भी जगाती है।
हाँ, एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखती है। ये देखती है कि कैसे उस दौर में विज्ञान और बुद्धिवाद का जो अनियंत्रित उपयोग था वो समस्याएं पैदा कर रहा था, और फिर कैसे एक उच्च शक्ति द्वारा संतुलन की आशा की जा सकती है। चलिए इसके मुख्य विचारों पर बात करते हैं।
हाँ जरूर। तो शुरुआत होती है 20वीं सदी के आकलन से। पुस्तक कहती है कि विज्ञान और बुद्धिवाद बड़ी उपलब्धियां थीं, पर एक दोधारी तलवार जैसे।
बिल्कुल सही कहा। सुविधाएं तो बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जो अमर्यादित उपयोग हुआ या कहें दुरुपयोग हुआ, उसने बहुत गंभीर संकट खड़े कर दिए।
जैसे किस तरह के संकटों की बात है इसमें?
देखिए, पुस्तक बहुत स्पष्ट बताती है, जैसे पर्यावरणीय संकट, प्रदूषण बढ़ रहा था, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का मुद्दा, ये सब। फिर प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी, चाहे वो खनिज हो, ईंधन हो या पानी, और समाज में नैतिक पतन और एक अजीब सी बेचैनी, जिसे पुस्तक ने किंग कर्तव्य विमूढ़ता कहा है।
किंग कर्तव्य विमूढ़ता मतलब?
मतलब एक भ्रम की स्थिति, क्या सही है क्या गलत है ये समझ ना आना, दिशाहीनता, और हाँ, बढ़ती आबादी का दबाव भी एक बड़ा संकट गिनाया गया है।
तो ये तो बाहरी संकट हुए, क्या पुस्तक इनके पीछे किसी गहरे कारण की तरफ भी इशारा करती है, कोई मूल वजह?
जी हाँ, और यही पुस्तक की खास बात है। वो कहती है कि असली जड़ बाहर नहीं, मनुष्य की सोच में है। मूल कारण बताया गया है भौतिकवाद पर अत्यधिक जोर।
भौतिकवाद मतलब सिर्फ दुनियावी चीजें?
हाँ, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष दिखने वाली दुनिया, उसी पर सारा ध्यान, और जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य हैं, जैसे संयम, सदाचार, ईश्वर में विश्वास, धर्म, इनकी उपेक्षा।
अच्छा।
तात्कालिक लाभ देखने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि दूरदर्शिता खत्म सी हो गई, और इसका नतीजा प्रकृति और इंसानी रिश्तों का संतुलन बिगड़ गया।
इच्छाएं और अहंकार बढ़े और आपसी विश्वास स्नेह कम हुआ, ये बात है।
बिल्कुल।
ये देखना दिलचस्प है कि पुस्तक भविष्य के बारे में क्या कहती है। एक शब्द आता है युग संधिकाल, 1989 से 2000 तक के समय के लिए। इसका क्या मतलब है
युग संधिकाल?
हाँ,
पुस्तक इसे दो युगों के मिलने का एक बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण समय मानती है। ये वो दौर था जब विनाशकारी प्रवृत्तियां, जो हमने अभी गिनी, वो अपने चरम पे पहुंच सकती थीं।
ओह।
लेकिन साथ ही एक उच्चतर सत्ता, जिसे पुस्तक नियंता या सृष्टा कहती है, वो संतुलन और नए सृजन की प्रक्रिया भी तेज कर रही थी। मतलब संकट के चरम में ही बदलाव की उम्मीद।
तो जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की किरण।
ठीक यही। यहीं पर पुस्तक का सबसे आशावादी, सबसे सकारात्मक संदेश सामने आता है कि तमाम संकटों के बावजूद 21वीं सदी एक उज्जवल भविष्य लेकर आएगी।
लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सतही नहीं होगा। इसका आधार होगा मनुष्य की सोच में क्रांति, जिसे पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति कहा है, और फिर उसके कर्मों में बदलाव।
क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया बदलेगी।
हाँ, सिद्धांत बहुत सीधा है, हर अति अपने अंत की ओर ले जाती है और फिर संतुलन आता है, प्रकृति का नियम है।
पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ समस्याओं और आशा की ही बात नहीं की होगी, शायद उस समय जो कुछ प्रयास चल रहे थे उनका भी जिक्र किया होगा।
हाँ, बिल्कुल किया है। पुस्तक में शांति कुंज हरिद्वार में जो युग संधि महापुरुष चरण जैसे आध्यात्मिक प्रयोग चल रहे थे, उनका उल्लेख है।
अच्छा।
और साथ ही अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना जैसी पत्रिकाएं और दूसरे साहित्य के माध्यम से जो विचार क्रांति फैलाने की कोशिश हो रही थी, उसे भी रेखांकित किया गया है। और खास बात ये कि ये पत्रिकाएं और पुस्तकें बिना किसी विज्ञापन के केवल अपनी उपयोगिता के बल पर लाखों लोगों तक पहुंची।
और शांति कुंज को एक तरह के मॉडल की तरह भी प्रस्तुत किया गया है।
हाँ, शांति कुंज को एक छोटे मॉडल के रूप में दिखाया गया है, जहां प्रामाणिक लेखनी, परिमार्जित वाणी और समर्पित कार्यकर्ताओं, जिन्हें पुरोधा कहा गया, उनके माध्यम से ये दिखाया गया कि कैसे आदर्शों को जमीन पर उतारा जा सकता है। पुस्तक में कई भविष्यवक्ताओं जैसे नोस्ट्राडेमस, जीन डिक्सन और अपने धर्म ग्रंथों श्रीमद् भागवत, महाभारत, यहाँ तक कि कुरान, बाइबल की भी कुछ उद्धरण दिए गए हैं।
अच्छा, वो क्या कहते हैं?
वो सब भी इसी तरह के एक बड़े वैश्विक परिवर्तन की ओर और उसमें भारत की एक विशेष भूमिका की ओर इशारा करते हुए लगते हैं।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग एक करीब 35 साल पहले लिखी गई, पर ये उस समय की चुनौतियों का बहुत गहरा विश्लेषण करती है और मानवीय चेतना में एक सकारात्मक बदलाव के जरिए एक बेहतर भविष्य का मजबूत विश्वास जगाती है।
बिल्कुल, पुस्तक का सार यही है कि संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न लगें, सही सोच यानी विचार क्रांति, सकारात्मक कर्म और मिलकर प्रयास करने से दिशा बदली जा सकती है।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि लगभग 3.5 दशक पहले कहे गए ये विचार आज जब हम संतुलन और सार्थकता की तलाश कर रहे हैं तो कितने प्रासंगिक लगते हैं।
हाँ, और शायद ज्यादा प्रासंगिक, क्योंकि इनमें से कई चुनौतियां तो आज भी हमारे सामने हैं, बल्कि शायद और भी जटिल रूप में। ये विचार आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं।